نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. जैसे कि हम गुनाहों की बख्शिश के ऊपर बात कर रहे थे पिछले अपने कुछ प्रोग्राम्स में, तो ये बात तो हम सब ने रियलाइज़ की होगी कि हमसे गलतियाँ हुई हैं। अगर आपने वाकई अकेले में बैठ के सोचा है, टाइम दिया है इस चीज़ को, तो अपने गलतियाँ, अपने गुनाह याद आए होंगे यकीनन। क्या कोई ऐसा है जिसको कुछ भी याद ना आया हो? या तो इसका मतलब फोकस्ड नहीं थे, या अपना मुहासबा करने में बहुत लीनियंट है। क्योंकि जो हमारे आमाल की जांच पड़ताल करने वाला ना, उसकी नज़र तो बहुत तेज़ है। वो तो इस तरह नहीं जाने देगा, उसके पास सब हिसाब किताब मौजूद है। तो हम अपना भी ज़रा बैगेज खोल के देख लें कि हमारे पास क्या क्या है। कुछ थोड़ा सा आपको याद अगर करवा दूं, तो इनमें कहीं खुद को ढूंढ सकते हैं, कहीं किसी पे ज़्यादती की हो, किसी से झगड़ा किया हो, कहीं फ़ख्र गरूर किया हो, कहीं रियाकारी की हो, कहीं हसद नज़र आया, कहीं कोई हेरा फेरियाँ नज़र आईं, बेईमानियाँ नज़र आईं, कहीं कोई धोखा नज़र आया, कोई झूठ याद आया, कोई मुनाफ़कत, कहीं वादे का तोड़ना, कहीं किसी का हक मारना, कहीं ना हक की, जालिम की, ज़्यादती करने वाले की साइड लेना, कहीं रहमी रिश्तों को तोड़ना, कहीं मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा कता ताल्लुक करना, कहीं वजू दुरुस्त ना करना, कहीं नमाज सही ना पढ़ना, कहीं रोज़े फाड़ देना, कहीं पिछले रोज़े मुकम्मल ना होना, कहीं हमसायों से हुस्ने सलूक ना करना, कहीं किसी को सही मशवरा ना देना, कहीं सिफारिश करा के अपने नाजायज़ काम भी करवा लेना, कहीं रिश्वत देना, कहीं किसी से बदजुबानी करना, कहीं किसी पे इल्ज़ाम लगा देना, कहीं बेपर्दा घूमना, कहीं गलत नज़र डालना, कहीं गुनाह की चीज़ों का सुनना, कहीं राग रंग की महफिलों में रात गए तक बैठे रहना, कहीं बड़ों से बदलिहाजी करना, कहीं माँ बाप से बहसें करना, कहीं शौहर की नाशुक्री करना, कहीं नफ़रतें पालना, कहीं गइबतें करना, किसी का मजाक उड़ाना, बदखोइयाँ करना, लड़ाइयाँ डलवाना, डबल फेस ज़िंदगी गुजारना, कितना कुछ तो है। ये कुछ भी नहीं आपको नज़र आया अपने बैग में? और ये सामान तो निकलता आएगा, निकलता आएगा। सोचने बैठेंगे ना तो बहुत कुछ निकलेगा। ये कहाँ जाके ख़त्म होगा पता नहीं। ये तो अभी चीदा चीजा चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो अभी मोटी मोटी बात है। एक एक बात की बारीकी में अगर जाएं, तो अल्लाह ताला के हाँ तो नज़रों के इशारे तक लिखे हुए हैं, दिल के ख्यालात तक लिखे हुए हैं, तेवरियाँ चढ़ाना तक लिखा हुआ है, दिल के अंदर जो ख्वाहिशात उठती हैं, मेलानात उठते हैं, वो तक लिखे हैं। पर क्या करें, हमें तो कुछ नज़र ही नहीं आता। पर ये सोच लें कि ये सब लेके मिट्टी के नीचे अगर चले गए हम, जहाँ किसी ने हमारे साथ नहीं जाना, जो तन्हाई का घर है, कीड़ों का घर है, अंधेरे का घर है, तो कौन बचाएगा वहाँ? इस सामान को लेके गए अगर, तो सोचे फिर हमारा हाल क्या होगा। क्या अपने सामान में आपको ये चीज़ें नहीं नज़र आईं? क्या इनसे पाक हो चुके हैं? अगर हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर है तो गौर कीजिए, हम इसको लेकर नहीं जा सकते मट्टी के नीचे, वरना हमारी मदद के लिए कौन आएगा वहां? अगर वाकई हमने अपना ऑनेस्टली मुहासबा किया है ना, तो फिर तो वो हालत होनी चाहिए कि जिसको शायर कहता है ना, ना थी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते लोगों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी खताओं पे जू ही नज़र, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। वाकई फिर तो नज़र में कोई और बुरा लगता ही नहीं है, अपने ही जब इंसान को ऐब इतने नज़र आने लगे, अपनी पड़ जाए जिसको, बताओ भला उसको किसी और की खाक तवज्जो रहेगी? किसी और के ऊपर वो खाक उंगली उठाएगा? वो तो बेचारा अपने आप की मसले में ऐसा गुम होगा, अपनी ही मुसीबत की उसको पड़ी होगी। तो ये बातें अगर हमें नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं। इस धोखे से जागे कि इसमें देखें कोई और हमारी हेल्प नहीं कर सकता, कोई और हमें उतना नहीं जानता जितना कि हम अपने आप को जानते हैं। हर कयामत के दिन तो कहा जाएगा, हाय तू अपना हिसाब लेने के लिए खुद ही काफ़ी है, तुझे खुद ही पता है तूने क्या क्या किया, ये ले अपना अमालनामा, सब चीज़ें तो उसमें लिखी होंगी। जो हमारे हाफ़िज़े कमज़ोर हैं ना, वो भी सब हाफ़िज़े सही हो जाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी जो करते रहे हैं। मालिक बिन दिनार, वो पता है इतने बड़े बुजुर्ग थे, इतने उनकी जो तौबा का वाकया है इतना यानी इम्प्रेसिव है, कैसे उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी से तौबा की। वो कहते हैं कि मैं एक सिपाही हुआ करता था, अब शराब का बहुत शौकीन था, बहुत आदी था, हर वक्त शराब में मस्त रहता था। तो कहते हैं कि मैंने एक लौंडी खरीदी और उससे मेरी एक बेटी पैदा हुई, मुझे उस बच्ची से बहुत मोहब्बत थी, वो मेरी बेटी भी मुझसे बड़ी मानूस थी। तो यहाँ तक कि वो चलने लगी जब, तो मुझे इससे और ज़्यादा मोहब्बत हो गई, हर वक्त वो मेरे पास रहती थी। लेकिन उसकी आदत थी जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए लेता, वो मेरे हाथ से छीन के फेंक देती, लेकिन मुझे उससे इतनी मोहब्बत थी कि मुझे उसको डांटने का भी दिल नहीं चाहता था। जब वो 2 साल की हो गई तो इसका इंतकाल हो गया। इस सदमे ने मेरे दिल में बड़ा गहरा ज़ख्म छोड़ा, लेकिन सब्र किया इन्होंने। कहते एक रात मैं शराब में मस्त था, ना इशा की नमाज़ पढ़ी, इसी हालत में सो गया, तो मैंने देखा। अब ये देखें इनकी लाइफ क्या थी और उसके बाद ये क्या हुए। तो कहते हैं ख्वाब में जो इन्होंने देखा ना, काश हमें रियल लाइफ में ये नज़र आ जाए। कहते हैं ख्वाब में मैंने देखा कि हशर कायम हो गया, लोग कब्रों से निकल रहे हैं, मैं भी उन लोगों में हूँ जो मैदान हशर की तरफ ले जाया जा रहा हूँ। तो मैंने अपने पीछे कुछ आहट सी सुनी, मैंने जो मुंह मोड़ के देखा तो एक इतना बड़ा काला अजदहा मेरे पीछे दौड़ा हुआ आ रहा है, उसकी नीली आंखें हैं, मुंह खुला हुआ है और बेतहाशा मेरी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है। मैं इसके डर से घबरा के खौफजदा हो गया, खौफजदा होके जोर से भाग रहा हूं और वो मेरे पीछे भागा चला रहा है। सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ मिले, बहुत नफीस लिबास, बड़ी महकती हुई खुशबू उनसे आ रही थी। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने इनसे कहा खुदा के वास्ते मेरी मदद करें। वो कहने लगे मैं बहुत कमज़ोर हूँ और ये बहुत ताकतवर है, ये मेरे काबू में नहीं आ सकता, लेकिन तू भागता चला जा, शायद आगे तुझे कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जिससे तुझे निजात मिल जाए। मैं बेतहाशा भागा जा रहा था, मुझे एक टीला नज़र आया, मैं इस पर चढ़ गया, मगर वहाँ चढ़ते ही मुझे जहन्नम की दहकती हुई आग उस टीले के पार नजर आई। उसकी दहशतनाक सूरत और उसके मंजर नजर आए। इन सब हालात के देखने के बावजूद इस सांप की इतनी शिद्दत मुझ पे सवार थी और ऐसे भागा जा रहा था कि करीब ही था कि मैं जहन्नुम में जाके गिर पड़ूंगा। इतने में एक जोरदार आवाज सुनाई दी, पीछे हट, तू इन जहन्नमी लोगों में से नहीं है। कहते मैं वहां से पीछे को दौड़ा, वो सांप भी मेरे पीछे लौट के आया। फिर मुझे वो बड़े मियाँ नजर आए, सफेद लिबास पहने हुए। मैंने इनसे कहा कि मैं पहले भी आपसे दरख्वास्त कर चुका हूँ, इस अजदहे से मेरी जान बचाएं। उन्होंने कबूल ना किया। वो बड़े मियाँ रोने लगे, कहने लगे मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ये बहुत ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने एक पहाड़ी है, इस पे चढ़ जा, इसमें मुसलमानों की कुछ इमानतें रखी हुई हैं, मुमकिन है तेरी भी कोई चीज़ अमानत उसमें रखी हो जिसकी मदद से इस अजदहे से तेरी जान बचे। कहते मैं भागता हुआ क्या उस टीले पे चढ़ा और वो अजदहा भी मेरे पीछे आ रहा है। वहां पे चढ़ता जा रहा था कि किसी तरह मुझे इस मुसीबत से निजात मिले। मैं इंतहाई परेशान था क्योंकि वो सांप मेरे बहुत करीब आ गया था। अचानक मेरी निगाह सामने पड़ी तो मुझे अपनी 2 साल बच्ची नजर आई जो मर गई थी। वो मुझे देखते ही रोने लगी, कहने लगी खुदा की कसम ये तो मेरे अब्बा जान है। और ये कहते ही तीर की तरह कूद के एक नूर के पलड़े में चढ़ गई, अपने बाएं हाथ को मेरी तरफ बढ़ाया। मैं जल्दी से इससे लिपट गया, उसने अपने दाएं हाथ से इस सांप को पीछे कर दिया, वो फौरन पीछे को भागने लगा। फिर इसने मुझे बिठा लिया और खुद मेरी गोद में बैठ गई और फिर कहने लगी ऐ मेरे अब्बा जान, सूरह हदीद की वायत पढ़ी, क्या ईमान वालों के लिए इस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से और हक बात से जो इन पे नाजिल हुई है इनके दिल उससे झुक जाएं? क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह के ज़िक्र से इनके दिल लरज जाएं? इसकी ये बात सुन के मैं रोने लगा और मैंने पूछा बेटी तुम्हें कुरान पाक आता है, तुम जानती हो? वो कहने लगी हम सब कुरान को जानते हैं। मैंने पूछा बेटी ये एक सांप क्या बला थी जो मेरे पीछे लगी हुई थी? इसने कहा ये आपके बुरे आमाल थे, आपने उसको अपने गुनाहों से इतना ताकतवर कर दिया कि वो आपको अब जहन्नुम में खींच के डालने की फिक्र में था। मैंने पूछा वो सफ़ेद पोश ज़ईफ़ बुजुर्ग कौन थे? कहने लगी वो आपके नेक अमल थे जिनको आपने इतना ज़ईफ़ कर दिया, इतना कमज़ोर कर दिया कि वो इस सांप को आपसे दूर नहीं कर सके। तो मैंने पूछा बेटी तुम इस पहाड़ पे क्या करती हो? कहने लगी हम सब यहाँ पे मुसलमानों के बच्चे हैं, क़यामत तक हम यहीं रहेंगे, आपके आने के मुंतज़िर हैं, जब आप सब आएंगे तो हम सिफारिश करेंगे। ये जो छोटे बच्चे फौत हो जाते हैं किसी के। इसके बाद मेरी आंख खुल गई तो सांप की दहशत मुझ पर सवार थी। मैंने उठते ही अल्लाह जल्ले शानहू के सामने तौबा की और अपने बुरे अफ़ाल को छोड़ दिया। ये हैं मालिक बिन दीनार, इतने मशहूर, इतने बड़े बुज़ुर्ग बने फिर ये रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन देखें क्या चीज़ ने इनको तौबा करवाई, वो ये चीज़ थी कि इन्होंने अपने बुरे आमाल को देख लिया कि ये बुरे आमाल ही हैं जो जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे। और हम भी अपने जहन में अगर बुरे आमाल को इस तरह लेकर आए जैसे बहुत बड़ा सांप हो जो हमारे पीछे लग गया, अगर ये सांप ताकतवर होता गया तो जहन्नुम में फेंके बगैर ये वापस नहीं जाएगा। और वो बुजुर्ग नेक आमाल हैं, अगर नेक आमाल ताकतवर होंगे तो इंशाअल्लाह वो इस सांप को, सांप का मुकाबला करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर नेक आमाल ही इतने कमज़ोर हैं तो फिर क्या हाल होगा? आज अगर हम देखें हम नेक आमाल कर लेते हैं, ठीक है नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है रोज़ा रख रहे हैं, तस्बीहात भी कर रहे हैं, लेकिन बुराइयों को छोड़ते भी नहीं हैं, उनको भी साथ साथ उतना ही करते जाते हैं। और फिर सुभान अल्लाह अगर हमारे जो नापाकी के दिन आ जाएं तो फिर तो ज़ाहिर नमाज भी गई, रोज़ा भी गया, जिक्र अस्कार वैसे ही छोड़ देते हैं, कुरान की तिलावत भी चली गई, सब नेकियां तो वैसे ही चली गई, इबादत तो वैसे ही चली गई, और कोई काम करना नहीं नेकी का, बुराइयाँ एज इट इज़ होती चली जा रही हैं। 8-10 दिन गुनाह तो हो रहे हैं, मैं नेकी कोई ऐड नहीं हो रही हमारे आमालनामे में। गुनाह भरे चले जा रहे हैं, गुनाहों को हम ताकतवर कर रहे हैं। इसी तरह ज़िंदगी में भी आप देखें, जब आप बुराइयाँ छोड़ेंगे नहीं तो नेकी कैसे हेल्प करेगी। अगर बुराई भी ताकतवर हो रही है और नेकी भी आप ताकतवर कर रहे हैं, तो फिर देख लें, उस दिन मुकाबला होगा तो पता चल जाएगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो ही जीतेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम तौबा करें, हम इन चीज़ों से नज़रें ना चुराएं, जो हम कर रहे हैं उसको मान जाएं, उसके ऊपर तौबा करें। क्योंकि ये चीज़ें, ये गुनाह हमसे ऐसे नहीं धुल सकते, और अगर इनको हम कब्र में ले गए तो मैंने जैसे आपको कल बताया था कि मौत जो है अमल और तौबा दोनों का दरवाज़ा बंद कर देती है, और कब्र में जाके पता चल जाएगा, जाते ही पता चल जाना है। आखिरत का तो इंतज़ार बाद की बात है, इधर आँख उधर के लिए खुल गई, इधर की बंद हो गई, उधर सारे आमाल जो अभी नहीं नज़र आ रहे हैं ना हमें, जिनसे हम खुद नज़रें चुरा रहे हैं, शायद शर्माते हैं खुद से एडमिट करने में, या जानबूझ के गाफिल हैं। लेकिन ये सब मालूम हो जाएंगे। हज़रत अली एक दफ़ा कब्रिस्तान गए, साथ में हज़रत कुमैल भी थे। जब आप कब्रिस्तान पहुँचे तो आपने एक नज़र कब्रों पर डाली, इसके बाद कब्रों वालों से कहने लगे, जैसे उनसे खिताब करें, ऐ कब्र के बसने वालों, ऐ खंडरों में रहने वालों, ओ वहशत और तन्हाई में रहने वालों, कहो क्या खैर खबर है तुम्हारी, क्या हाल है तुम्हारा। फिर अपना हाल बताने लगे, हमारा तो ये हाल है कि माल तकसीम कर लिए गए, औलादें यतीम हो गई, बीवियों ने दूसरे खाविंद कर लिए, ये तो हमारा हाल है। अब तुम भी तो बताओ, तुम भी तो अपनी खबर सुनाओ। फिर कुछ देर खामोश रहे, कुमैल की तरफ देखा और फरमाया, कुमैल अगर ये कब्र वाले बोल सकते ना, इनको बोलने की इजाज़त होती ना, तो ये ज़रूर कहते कि बेहतरीन सामान परहेजगारी है, तकवा है। ये फरमाया, रोने लगे, देर तक रोते रहे, फिर बोले, कुमैल कब्र अमल का संदूक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना बैगेज, जो कब्र है ना वो अमल का संदूक है, और मौत के वक्त ही ये बात मालूम हो जाती है। क्योंकि आप उस संदूक को खोलेंगे, सब जो उसमें आपने रखा हुआ है वो सब नज़र आ जाएगा। तो वाकई अगर इंसान इन चीज़ों को देख ले, जितनी जल्दी देखे, जितनी जल्दी रियलाइज़ कर लेगा, जितनी जल्दी मान लेगा, उतनी ही जल्दी तौबा कर सकेगा। जिन्होंने मान लिया था ना, उनको तो आगे की मंजिलें ऐसे नजर आती थी जैसे कि आज उनकी आंखों के सामने है। अब तो शायद इतना इमेजिन भी नहीं कर सकते ना, लेकिन देखिए, वो इतने बड़े बड़े खलीफा, खुलफाए राशिदीन हो या बाद में आने वाली खलीफा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ही ले लें, उनकी खिलाफत तो खैर 2.5 साल तक रही थी, लेकिन सिर्फ 2.5 साल में इन्होंने इतना खुदा का खौफ, इतना वो आखरत से कांपने वाले, इतने खुदा तर्स इंसान थे। एक दफ़ा उनकी बीवी कहती हैं, उनकी बीवी ने ये बात बताई, बताते बताते भी रोने लगी। उनके भाई और अज़ीज़ बड़े घबराए, वजह मालूम की, फरमाने लगी, मैंने एक ऐसा दिल दहला देने वाला मंज़र देखा ना, अगर तुम देख लेते तो तुम्हारा बुरा हाल हो जाता। फिर बताने लगी कि एक रात मैंने देखा अमीरुल मोमिनीन को, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में कहती हैं, कि नमाज में मशगूल हैं, बड़े शौक़ से नमाज पढ़ रहे हैं, बड़े शौक़ से, बड़े दिल लगा के कुरान की तिलावत कर रहे हैं नमाज में, पढ़ते पढ़ते इस आयत पे आए जो हम सबको याद है, अक्सरियत को याद होगी, यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनु अल जिबालु कल एहनिल मनफूश। जरा सोचो तो सही, उस दिन क्या हाल होगा जिस दिन लोग पतंगों की तरह हैरान परेशान इधर उधर बिखरे हुए होंगे, जैसे पतंगे नहीं बिखरते। पतंगों को देखा आपने, एक जगह से उड़े तो इतने ढेरों पतंगे ही पतंगे हवा में नजर आते हैं, जैसे इनको किसी बंद डब्बे से किसी ने छोड़ दिया। ऐसे लोग बिखरे पड़े होंगे, परेशान हाल होंगे, और पहाड़ धुन की भी रुई की तरह हो जाएंगे। क्या धुनक धुनक के जैसे रुई उड़ाता है कोई इस तरह। तो जब ये आयत पड़ी तो कहती हैं इतने बेताबों के चीख मारी, धड़ से जमीन पे गिर गए, फिर उठे, उठ के फिर दोबारा ये आयत पड़ी, फिर गिरे। मैं समझी शायद अब इनका दम निकल गया। थोड़ी देर में होश आया तो फिर चीख मारी, फिर बेकरार होके सहन में टहलने लगे। टहलते जा रहे थे, ये आयत पढ़ते जा रहे थे। क्या हाल होगा उस दिन, क्या हाल होगा उस दिन जब लोग पतंगों की तरह तितर बितर हो जाएंगे, बेकरार होंगे, ये पहाड़ धुन की भी रुई की तरह होंगे। ये आयत पढ़ते पढ़ते फिर जमीन पे गिर पड़े। कहते मुझे लगा कि अब तो इनकी जान ही निकल गई, अब नहीं इनको होश आना। आप बताएं इस सवाल का जवाब, आप बताएं। जो सवाल वो अपने आप से कर रहे थे वो मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताएं। जिस पर उमर बिन अब्दुलाजीज इतने बेचैन हो रहे थे कि क्या हाल होगा उस दिन वाकई, जिस दिन लोग पतंगों की तरह हैरान परेशान इधर उधर बिखरे हुए होंगे, पहाड़ उड़ रहे होंगे, लोग अपनी कब्रों से निकल रहे होंगे, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, अफरा तफरी मची होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, और हम ये सामान लेके वहां पहुंच जाएंगे, हम ये चीजें लेके पहुंचेंगे। ना कोई ढंग की नमाज है इसमें, ना कोई ढंग का वजू है इसमें, जो रोजे भी हैं वो भी फटे हुए हैं, पता नहीं किस तरह के रोजे हैं। अल्लाह हम ये लेके पहुंचेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। वो जो इतने डरने वाले थे वो इतने परेशान हैं, तो हम जैसे लोग जो अपनी अनाओं में रहने वाले, जो चार लफ्ज़ पढ़ के अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझने वाले, जो चार आंसू बहा के समझें कि बस अब हम बड़े नेक पारसा हो गए, हमारे क्या हाल होगा, हम कहाँ होंगे, मैं किधर भाग रही होंगी। और उस दिन तो अपने गुनाहों की जो गठड़ी होगी वो अपने सर पे उठानी होगी, जितने ज्यादा वजनी होंगे, जितने ज्यादा गुनाह होंगे उतना ही ज्यादा बोझ होगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा उस दिन। एक दो दिन ऐसी अफरा तफरी, ऊपर से बोझ उठाना, और मददगार भी कोई नहीं है। ऐसे दिन के आने से पहले तौबा करनी है, और जिसने वाकई सच्ची तौबा कर ली ना, तो उलमा सच्ची तौबा की अलामात भी बताते हैं कि तौबा करने वाले में अगर ये चार बातें आ जाए ना तो इसने वाकई सच्ची तौबा की है, वरना इसकी तौबा में खोट है। पहली अलामत यह है कि बेहुदा बातें नहीं करेगा, गीबत चुगलखोरी झूठ से उसकी जुबान रुक जाएगी। दूसरी अलामत यह है कि इस दिल के दिल में किसी इंसान के लिए कोई हसद या दुश्मनी नहीं होगा। और हम उस दिन से बात कर रहे थे ना कि हातिम ने क्या सबक सीखे 33 साल में, तो अगली जो बात थी वो भी यही थी कि हातिम ने जो सीखा उनमें यह था कि उन्होंने कहा कि मैंने देखा सारी दुनिया को कि एक दूसरे पे ताने देते हैं, ऐब जुई करते हैं, बुरा भला कहते हैं, सब का सब ये हसद की वजह से होता है, इसके पीछे जो फैक्टर होता है ना वो हसद होता है। तो मैंने अल्लाह ताला का ये इरशाद सुना, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, ए हमने तकसीम की है इनके दरमियान इनकी रोजियां, हमने एक को दूसरे पे फजीलत फौकियत दे रखी है ताकि इसकी वजह से एक दूसरे से काम लेता रहे। तो कहते हैं, जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मैंने हसद करना ही छोड़ दिया। मैंने जान लिया कि रोज़ी का बांटना सिर्फ़ अल्लाह के कब्ज़े में है, वो जिसके हिस्से में जितना चाहे लगा दे। इसलिए मैंने लोगों से दुश्मनी ही छोड़ दी। इसका मतलब है, किसी के पास अगर ज़्यादा हुसन है, ज़्यादा माल है, या कोई औरत है जिसको अच्छा रिश्ता मिल गया, अपने घर में ज़्यादा खुश है, कोई हसद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह ने उसके नसीब में लिख दिया। इसमें ना उसका कोई कमाल है, ना किसी और की कोई खूबी है कि किसी ने उसको रिश्ता ढूंढ दिया। नहीं, ये अल्लाह ताला की तकसीम है। इन्हीं चीज़ों पे हम हसद करते हैं ना। उसका काम कारोबार अच्छा क्यों है, उसको अच्छा घर क्यों मिल गया, उसका शौहर इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है, वो इतनी खूबसूरत क्यों है, उसके पास अच्छी औलाद क्यों है, उसके पास ये चीज़ क्यों है। तो ये अल्लाह की तकसीम है। जो ये समझ ले कि ये अल्लाह की तकसीम है, उसको तो हसद आएगा ही नहीं। तो दूसरी अलामत ये है कि इंसान के दिल में किसी के लिए कोई हसद ही नहीं रहेगा, दुश्मनी रहेगी नहीं। तीसरी अलामत ये है, वो बुरे दोस्तों से कतअ ताल्लुक़ कर देगा, उनके साथ नहीं मेल जोल रखेगा, क्योंकि पता है उसको कि बुरी सोहबतें उसको किधर ले जाएंगी। और चौथी अलामत यह है कि मौत के लिए तैयार रहेगा, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता रहेगा, इस्तग़फार करता रहेगा, अल्लाह की इताअत में और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। ये उलमा लिखते हैं कि ये चार अलामतें, यानी ये चार चीज़ें शो ऑफ होने शुरू हो जाती हैं जब इंसान तौबा करता है। तो थोड़ी सी आपको बात बताऊंगी, ये जो मैंने थोड़ी बातें आपको गिनवाई हैं ना, इन्हीं के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम इनको छोड़ें। अब देखिए, मिसाल के तौर पे अगर हमसे किसी को बुरा भला कहा गया, अब वो हो सकता है हमने बुरा भला कहा हो किसी को, तो इतनी प्यारी बात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दी हमें। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते थे, लेकिन आपने हमें क्या सिखाया, एक दुआ सिखा दी है। पता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैंने जिस मोमिन को भी बुरा भला कहा हो, तो इसके लिए कयामत के दिन इस बात को अपनी कुर्बत का ज़रिया बना दे, इसके लिए उसे अपनी कुर्बत का ज़रिया बना दे। ये जो मैंने इसको बुरा भला कहा है, तो यानी अल्लाह उसको अपनी कुर्बत दे दे। इसी तरह बाज़ उलमा कहते हैं कि जैसे अगर किसी के अंदर हसद है, किसी से बुग्ज़ है, कीना है, तो ऐसा करना शुरू कर दो कि उसके लिए दुआ करना शुरू कर दो। हम कहते हैं ना, इसका हम क्या इलाज करें, बस आ जाता है, अब हम क्या हमारा कसूर है, उस बंदे के लिए दुआ शुरू कर दें। तो उलमा ने एक दुआ बताई है, अल्लाहुम्मा अग़फिरली वली मन ज़लमनी, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, और जो मुझ पे जुल्म करे उसको भी माफ़ कर दे, यानी उसकी बख्शिश की दुआ। अब मुझे इसके ऊपर हदीस तो नहीं मिली, मगर यही है उस उलमा का मिला है। कि वो ये कहा करते थे कि ये कहना चाहिए जब आपको किसी से भी हसद हो, कि अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे, और जो मुझ पे जुल्म करे अल्लाह उसको भी माफ़ कर दे। तो इंशाअल्लाह ताला आप के अंदर से ये चीज़ निकल जाएगी। फिर इसी तरह किसी का अगर ऐब पता चल जाए, उसकी पर्दापोशी करें, ये सोच के करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा किसी बंदे की दुनिया में पर्दापोशी करता है ना, अल्लाह ताला आखरत में उसके आमाल पे, बुरे आमाल पे पर्दा डाल देगा, अल्लाह पर्दा डाल देगा। ये सोच के हम दूसरों के आमाल पे, दूसरों के ऐबों पे, दूसरों की कोई बात पता चल जाए तो उस पे पर्दा डाल दें। इसी तरह झगड़े को ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ याद रखें, जब आप किसी से साथ आपका झगड़ा हो जाए, बेशक आप हक़ पे हैं, तो इस हदीस को याद कर लीजिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गारंटी देता हूँ, मैं ज़मानत देता हूँ, गारंटीड, एक स्टैम्प होती है ना गारंटीड की, वो लिख देते हैं, मुहर लगा देते हैं, दिस इज़ गारंटीड, हमने गारंटी दी है। कोई कंपनियाँ देती हैं, कोई कुछ देते हैं, हम ना वारंटीज़ बड़े शौक से ख़रीद लेते हैं ना। पैसे दे के खरीदते हैं। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें गारंटी दी है, जन्नत के किनारे पे एक घर की। किस बात पे? कि हम अगर झगड़ा छोड़ दें, झगड़ा छोड़ दें बावजूद इसके कि हम हक पे हैं। ना हक पे तो छोड़ना ही छोड़ना है ना, वो तो हमारी बुरी बात है कि हम क्या अगर गलत कर रहे हैं तो जाहिर है फिर तो छोड़ना ही है झगड़ा, लेकिन हम हक पे हैं, हमारी बात सही है, ऐसा नहीं है कि हम गलत कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जस्ट टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट, जस्ट टू अवॉइड लड़ाई झगड़ा फसाद, हम बस जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, हम कहते हैं बस ठीक है मैं आगे इसमें वो नहीं करूँगी, हालांकि आपको पता है कि आप सही हैं। तो उसके लिए ये नहीं कि उस बंदे को कह देना मुझे पता है कि वैसे मैं ठीक हूँ लेकिन मैं फिर भी झगड़ा छोड़ दी क्योंकि मैंने आज ये हदीस सुन ली, ऐसे नहीं कहना, इससे तो झगड़ा और बढ़ेगा। वो कहेगा अच्छा, अब तुमने अपने आप को सही समझती हो। नहीं, कभी शौहर बीवी के दरमियान आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कभी और आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, ज़्यादा तो घरों के अंदर ही होते हैं। तो अगर हम इस हदीस को याद रखें तो अल्लाह ताला करे कि हम सबको हमेशा ये याद रहे, हम तो नाहक पे भी होंगे तो फिर भी नहीं मानते कि हम हमारी ज्यादती है, हमारी गलती है। तो अगर आप अपने आप को हक पे भी समझते हैं ना तब भी छोड़ दें, तो इंशाल्लाह आपको गारंटीड एक घर मिलेगा जन्नत, और ये गारंटी नबी की ज़ुबान से है, किसी आम बंदे की नहीं। और जो इंसान झूठ बोलना छोड़ दे, इवन मजाक में भी झूठ ना बोले, हमने तहिया किया है ना इस रमज़ान में कि इंशाल्लाह हम झूठ छोड़ देंगे, तो जो मजाक में भी झूठ छोड़ दे, मजाक में भी ना झूठ बोले, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के सेंटर में एक घर की जमानत दी है, गारंटीड। और एक ऐसा भी इंसान है जिसको जन्नत के आला दर्जे में घर की जमानत दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो है जो अपने अखलाक अच्छे कर ले। अल्लाहुम्मा कमा हसनता खल्की फहसिन खुलुकी, अल्लाह जैसे तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई है ना मेरे अखलाक भी अच्छे कर दे। तो उसको तो आला जन्नतों में घर की गारंटी है, गारंटी से ज़्यादा क्या बात हो सकती है कि गारंटी मिल गई। तो हो सकता है कि आपको शायद ये बात इनमें से कोई याद रहे और आपके लिए आसान हो इंशाल्लाह छोड़ना झगड़े को, या पर्दा डालना, या हसद और बुक्स को अपने अंदर से निकाल देना। जब आप इस दुआ को मांगना शुरू करेंगे ना इंशाल्लाह ताला फिर खुद ब खुद हसद वगैरह आपके अंदर से निकल जाएगा इंशाल्लाह। एक आज की सुन्नत जो है, जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में एक बड़ी प्यारी बात भी बताई, वो है रात को वुज़ू करके सोना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रात को वुज़ू करके सोया तो एक फरिश्ता इसके शार में रात गुजारता है। शार क्या है? इमाम मुंजरी कहते हैं कि शार से मुराद इंसान का कपड़ा है, तो उसके कपड़े में रात गुजारता है। जूं ही वो उठता है तो फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा अग़फिर ले अब्दी फ़लान, ए अल्लाह अपने फ़लां बंदे को, यानी इसका नाम लेके जो भी ये बंदी है इसका नाम लेके कहता है अल्लाह इसको माफ़ कर दे, फरिश्ता दुआ करता है। कितना आसान अमल है ना, लेकिन देखें फरिश्ते की दुआ आपने ले ली कि वो आपके लिए बख्शिश की दुआ करें, हमने अपने लिए भी बख्शिश मांगनी है और इंशाल्लाह हमने वो काम भी करने हैं कि हमारे लिए फरिश्ते भी रहमत की दुआएं करें, बख्शिश की दुआएं करें, ठीक है इंशाल्लाह ताला। वज़ू में हम पहुंचे थे यहाँ तक कि वज़ू सारा मुकम्मल हो गया, अब इसमें आखिर में जो दुआ पढ़नी है वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। तो ये दुआ जो भी वज़ू के बाद पढ़ता है, कलमा शहादत ही हो गया, उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कि जिससे चाहे दाखिल हो। नहीं याद रहता लिख के लगा लें कि वजू के बाद इंशाल्लाह ये दुआ पढ़नी ही पढ़नी है। इसका मतलब है वजू के शुरू में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी है और आखिर में ये पढ़ के फिर अल्लाहुम्मा जालनी मिन अत्तवाबीना व जालनी मिन अलमुततहिरीन ये पढ़नी। ठीक है, तो लेकिन ये कलमा शहादत तो ज़रूर पढ़ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुह। नमाज में हम तहियात तक पहुँचे थे, तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु, ये हमने किया था कि तमाम मेरी जो कौली इबादत है, बदनी इबादत है, माली इबादत है, इन तीनों से ये माना बनता है। और ये भी माना बनता है अत्तहियातु लिल्लाह, अजमत और सलामती अल्लाह के लिए, दुआ का मुस्तगिक भी वही है, अत्तय्यिबात तय्यिब कलमे भी उसके लिए। ठीक है, तो ये हम पहले कर चुके, आगे है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काश मतलब समझ आता होता तो पता होता कि हम ये सलाम भेज रहे हैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, सलाम हो आप पे ए नबी और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें हो। तो देखिए सलाम भी, जैसे हम एक दूसरे को कहते हैं ना सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसी तरह आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हर नमाज में सलाम भेजते हैं, पर बेशऊरी से भेजते हैं, हमें आज तक पता ही नहीं हम उन पर सलाम भेजते हैं नमाज में, पता ही नहीं होता ना कितनी बेशऊरी से भेज रहे हैं। तो ये तो आसान ही है ना, अस्सलामु आला क्या, आला भी आपको माना आता है, क्या कभी आता है अपॉन यू, अय्युहन नबी ए नबी, वाह और रहमतुल्ला रहमत अल्लाह की, वाह और बरकातुहू बरकतें उसकी। ठीक है, यहाँ तक आपने इंशाल्लाह याद कर लेना इन कलिमात को, इसका साथ साथ आपने तर्जुमा याद करना है, ये आपको आना चाहिए। इसलिए मैं आपको करवाती, सिर्फ एक दफ़ा बताने के लिए नहीं, आपके कानों से गुजारने के लिए नहीं, पूरी नमाज का आपको तर्जुमा पूरा आना चाहिए, कोई आपसे पूछे तो आप बताने के काबिल हो। और ये काम कीजिए ज़रा, एक बंदे को, बच्चे को, बड़े को, किसी को भी, किसी एक बंदे को पकड़ लें, इस आपके करीब नहीं है कोई, फ़ोन पे किसी को सिखाना शुरू करें नमाज का, कि मैंने किसी एक को सिखाना है। इसके लिए आप की मर्जी है, आप किसी को चूज़ कर लें जिसको नहीं आता और उसको आपने सिखाना है, ये आपका इस रमज़ान में काम है। ठीक है, इंशाल्लाह किसी एक बंदे को सिखा दें, आपके लिए सदकाए जारिया भी होगा और इंशाल्लाह ताला देखिए कितना नेकी का सबब भी होगा और आपका अपना तर्जुमा भी रिवाइज़ हो जाएगा, इंशाल्लाह जहन में भी रहेगा। मैंने देखा है मस्जिद में लोग रुकू और सजदा नहीं सही कर रहे होते, रुकू में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घुटनों को पकड़े और फिर आपके बाजुओं में खम नहीं हो, बेंड नहीं हो, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो और कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो। इसी तरह सजदे में भी उंगलियां उनकी ज़मीन पे लगी होती हैं, जो उंगलियों की टिप्स होती हैं पाँव की उंगलियों की, तो वो ज़मीन पे ऐसे नहीं लगी होनी चाहिए, उनको टूवर्ड्स किबला होना चाहिए उनकी डायरेक्शन। ठीक है, यानी पाँव की उंगलियाँ बेंड होनी चाहिए ना। तो ये प्लीज़ ज़रा ध्यान से अपना रुकू और सजदा करें, और जहाँ मैंने आपको बताया था हिलना नहीं है नमाज में, हिल हिल के वजद में नहीं आ जाया करें, कोई आप क्या कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं क्या बात है कि आप इतना वजद में आ जाते हैं, क्यों हिलते हैं इस तरह, आप जमात में दूसरों को भी देखें डिस्टर्ब करते हैं, जब आगे पीछे हिल रहे हैं आप, हिल रहे हैं कॉन्स्टेंटली, एक इन मोशन है आप, तो ना तो खुद इन मोशन रहना है, बॉडी को भी नहीं इन मोशन रखना और प्लीज़ नज़रों को भी इन मोशन नहीं रखना, नज़रों को भी हरकत नहीं देनी। आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए, सजदे की जगह पे, उससे हिलनी नहीं चाहिए। याद रखिए आप किसके सामने खड़े हैं, ये नहीं याद रहता, क्या कोई सर उठा के इधर उधर देख सकता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई क्या कर रहा है, ये कौन सी नमाज हो रही है कि आपका ध्यान इधर उधर है। तो नमाज में आपकी नज़र सजदे की जगह से ना उठे। सहाबा किराम कहते थे हम डरते हैं कि हम कहीं अपनी नज़रें उठाएं और हमारे पर कोई अल्लाह का अजाब ना आ जाए, तो इसलिए नज़र वहाँ पे जमा के रखें। और जब अत्तहियात पढ़ रहे हो तो आपकी नज़र कहाँ पे होनी चाहिए, जो शहादत की आपकी उंगली है इस तरफ, इससे आगे नहीं जानी चाहिए। तो सोचे जब आपकी वहां तक नजर होगी तो आपको अपना सर कितना बेंड करना पड़ेगा। इसी तरह सजदे की जगह पे अगर आप नजर रखनी होगी तो उसके लिए भी सर बेंड करना पड़ेगा, फिर आप ऊपर सर उठा ही नहीं सकते वरना आपकी नजर हट जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपने ये नजर को नहीं घुमाना। आज का जो जिक्र है वो जिक्र ऐसा है कि जो लोग बीमार हैं वो भी अपने लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बीमारियों की शिफा है, तकरीबन 99 बीमारियों की शिफा इस कलमे में। और ये कलमा वो है कि जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अबू मूसा आशरी से कि क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से खजाना ना बताऊं? तो फरमाने लगे क्यों नहीं या रसूलल्ला, ज़रूर बताएं। आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तो ये कलमा दवाई की तौर पे भी यूज़ करें, दवा है ये, ठीक है, बीमारियों की दवा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, मेरे अंदर तो कोई ताकत कोई कुव्वत है ही नहीं, सारी ताकत कुव्वत तो अल्लाह के पास ही है, मेरे अंदर क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये कलमा समझ के ज़रा जो है ना अगर आप इस्तेमाल करेंगे इसको, इसलिए इस्तेमाल करना कह रही हूँ क्योंकि जिन्होंने दवा के तौर पे इस्तेमाल करना है फिर लोग ज़्यादा शौक रखते हैं, फिर उस कलमे को ज़्यादा उसका जिक्र करते हैं जिसका उनको पता चल जाता है कि इसका मुझे दुनिया में कोई फ़ायदा है। आज की दुआ थोड़ी सी ज़रा लंबी है, इसके लिए आपसे पहले से माजरत कर लेती हूँ, लेकिन चूंकि गुनाहों की बख्शिश की बात हो रही है ना तो इसलिए ये दुआ मैंने आपके लिए निकाली है, और ये दुआ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए भी निकाली है। तो ये वो दुआ है कि आपको मिल जाएगी, नमाज की किताबों में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। आखिरी तहज्जुद की जो तहज्जुद कह रहे हैं तशहुद की जो दुआएं हैं ना उसमें ये दुआ भी मांगी जाती है ना, हमें तो एक ही सिखाई हुई है रब्बी जालनी और रब्बना आतेना, बस बचपन से हम बस वही पढ़ रहे हैं। हालांकि आखिरी तशहुद में आप तहियात पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के फिर जो भी दुआएं पढ़ी जाएँ जो भी इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं वो आप पढ़ सकते हैं, उनमें एक ये दुआ भी है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कथीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फिरली मग़फिरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल ग़फूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ऐ अल्लाह मैंने बेशक अपने नफ्स पे जुल्म किया, कसीर जुल्म बहुत ज़्यादा जुल्म कर लिया अल्लाह मैंने अपने आप पे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीर वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, और अल्लाह गुनाहों को कोई नहीं माफ़ कर सकता सिवाय तेरे, गुनाहों की बख्शिश तू ही कर सकता। फ़ाग़फिरली बस मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, मेरी मग़फ़िरत कर दे अल्लाह, मुझे बख्श दे। मग़फ़िरतम मिन इंदिक अपनी ख़ास बख्शिश में से, अपने पास से अल्लाह मुझे बख्शिश दे दे। वरहमनी मुझ पे रहम फरमा, इन्नका अंतल गफूर रहीम, और क्योंकि मग़फ़िरत मांगी है और रहम मांगा है इसलिए अल्लाह को उसके इन्हीं दो नामों से पुकारा है कि बेशक तू तू तो बड़ा बख्शने वाला है अल्लाह, तू तो बड़ा रहम करने वाला है, इसीलिए मैं तेरे से ये बख्शिश और रहम मांग रही हूँ ना कि तू तेरा नाम ही ये गफूर रहीम। बहुत प्यारी दुआ है, आप दिल से इसको मांगिएगा तो एक दफ़ा मेरे साथ इंशाल्लाह इस दुआ को मांग ले। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कथीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फिरली मग़फिरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल ग़फूरुर रहीम। अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमा दे, अल्लाह हम सब पे रहम फरमा दे, अल्लाह हम इन कमजोरों पे रहम फरमाया, और हमारी तौबा को कबूल फरमाया। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका 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 व नतूबु इलैक।